জনবল্লভ গিরিবর ধারি যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন
সবকো পুকারনা হ্যাঁ আপ রাধা রানী কে ধাম মে আয়ে হ্যাঁ উনকা নাম পুকারনে কে লিয়ে আয়ে হ্যাঁ উসমে সংকোচ নাহি করনা হ্যায়
যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যমুনা তীরাবনচারী যমুনা তীরাবনচারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী হরি কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় রাধে জয় রাধে জয় শ্রী রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয় শ্রী রাধে
ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতম য়েন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ শ্রীচৈতন্য মনোভীষ্টম স্থাপিতম য়েন ভূতলে স্বয়ং রূপক কদা মহ্যম দদাতি স্বপদান্তিকম বন্দেহম শ্রীগুরো শ্রীযুতা পদকমলম শ্রীগুরুন বৈষ্ণবাংশ্চ শ্রীরূপম সাগরজাতম সহজনা রঘুনাথম্বিতম তম সজীবম সাদ্বৈতম দূতম পরিজনা সহিতম কৃষ্ণ চৈতন্য দেবম শ্রীরাধা কৃষ্ণ পাদান সহগণা ললিতা শ্রী বিশাখান্বিতমশ্চ হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমোস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী ঋষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাম পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ
সবসে পেলে মে সব বরিষ্ঠ ভক্ত কা আশীর্বাদ দেনা চাহতা দ্য ব্লেসিংস অফ অল সিনিয়র ডিভোটিস হম সব লোক শ্রী বরসানা ধাম মে আয়ে হ্যাঁ বরসানা ধাম কি
और आप सबका ये परम भाग्य है कि आप इस दिव्य स्थल पर अपने आप को ला सकें। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम केवल शरीर से नहीं हम लेकिन आत्मा से भी इस धाम में प्रवेश करें, संग करें, यहाँ के महिमा को समझें। समय तो बहुत सारा नहीं है लेकिन आपको थोड़े से समय में बहुत सारा कुछ समझना है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखिए। 1986 में जब सबसे पहली बार हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब हमको मथुरा लेके आए थे स्टेशन पर, उन्होंने हमारा स्वागत किया था। आज आपको ये बात बड़ी स्वप्नवत लगेगी, इट्स लाइक ए ड्रीम यू नो, लेकिन उस समय उन्होंने स्टेशन पर ही प्रवचन दिया था, स्वागत प्रवचन। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करना है तो यहाँ पर पहुँचते ही पहले ही क्षण से हृदय के अंदर के कोने में बहुत ही उत्कट प्रार्थना उनकी कृपा याचना के लिए करती रहनी चाहिए। यू हैव टू कीप प्रेइंग इंटेंसली फॉर राधा रानीज मर्सी एट द बॉटम ऑफ योर हार्ट। जितने समय आप यहाँ पर है, जितने समय, जितना क्षण, जितने मिनट, जितने घंटे, जितने दिन, जितने हफ्ते, भगवान की दया से आपको यहाँ पर हर समय राधा रानी की कृपा की याचना करते रहना चाहिए। मन को बटोरना चाहिए क्योंकि श्री वृंदावन धाम पृथ्वी तल में भगवान को बड़ा प्रिय है। पृथ्वी तल ही भगवान को सारे ब्रह्मांड में बहुत प्रिय है, लेकिन पृथ्वी तल पर भारतवर्ष भगवान को बड़ा प्रिय है और भारतवर्ष में वृंदावन धाम बड़ा प्रिय है। उसमें 137 इंपॉर्टेंट वन है, उसमें भगवान को 12 वन बहुत प्रिय है। उस 12 वन में भगवान को श्री वृंदावन धाम बहुत प्रिय है। वृंदावन यानी कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो वृंदावन अभी भौगोलिक वृंदावन है, ज्योग्राफिक, लेकिन जो सही वृंदावन है वो उसमें नंदगांव, बरसाना, जावट, गोवर्धन, जमुना और आज का वृंदावन, ये सब सम्मिलित है। तो वो भगवान को बड़ा प्रिय है और इसमें सभी वृंदावन धाम में सब जगह पर सारे संत लोग, सारे देवता लोग, सारे महात्मा लोग भगवान के चरणों की रज की याचना करते हैं, भगवान के चरणों की रज चाहते हैं। लेकिन बरसाना धाम एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिनकी चरण रज की याचना, मतलब इच्छा वांछा सब लोग करते हैं, वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर आकर राधा रानी के चरण कमल के रज की इच्छा करते हैं। तो ये बड़ा विशेष, बड़ी विशेष बात है ये कि जिनके चरण कमल सब लोग चाहते हैं वो स्वयं यहाँ पर आकर यहाँ के रज पे लोटपोट हो जाते हैं। ही रोल्स इन द डस्ट हियर टू अचीव द मर्सी ऑफ राधा रानी। इसलिए अपने आप को बड़ा गंभीर भाव में रखिए यहाँ पर, ये बड़ा उत्कट धाम है। उत्कट यानी इंटेंस प्लेस। जो भी रस, भगवान को रसराज कहा जाता है, है ना, क्योंकि सभी रसों के स्वामी है, वो सभी रसों का आस्वादन करते हैं। लेकिन वो जो रस उनके अंदर है वो सारा रस जो है उसका उगम राधा रानी से होता है और राधा रानी की तरफ से उनका उगम होता है, उसका विकास होता है और उनकी तरफ से इस रस की प्राप्ति कृष्ण करते हैं और उसके बाद में उस रस का ये म्यूजिक सब लोग बंद कर देना, अच्छा रहेगा, आपका मन लगा रहेगा राधा रानी के विचार में। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, तो वो रस का जो प्रचार है, प्रसार यानी विस्तार जो है वो उसके बाद में होता है। राधा रानी भगवान की ऐसी अंतरंगा सखी है, एकमेव, जिसके आगे भगवान को और कुछ प्रिय नहीं है। और ये वो जगह है जहाँ पर स्वयं सखी बनकर श्री कृष्ण भगवान चुनरी ओढ़कर आते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है। जयदेव गोस्वामी भी इसको लिख नहीं पाए, जब ये प्रसंग आया लिखने का तो वो दंग रह गए, उन्होंने लिखना ही बंद कर दिया और वो गंगा जी में स्नान करने चले गए। तो भगवान ने स्वयं आकर इस कविता को पूरा किया है ये बताने के लिए कि ये सच है कि मैं उनके चरणों में लोटपोट होता हूँ, उनकी याचना भी करता हूँ। तो ऐसा ये दिव्य धाम है, इसमें सारे देवताएं भी सखी बनकर आते हैं, अपने आप को निम्न भाव में रखते हैं। दास्य भाव में रखते हैं, न्यून भाव में रखते हैं, क्योंकि सब लोगों को श्री जी महारानी की कृपा चाहिए। क्योंकि श्री जी महारानी जो है राधा रानी, वो भक्ति का उगम है। हम सब लोग समझते हैं हम भक्त हैं, लेकिन भक्त तो वही है जो भगवान से विभक्त नहीं है, भगवान से जो अलग नहीं है वही भक्त है। और वही जो भक्ति है उसका उगम राधा रानी है, और जो भी कण कण मात्र में हम समझते हैं हमारे अंदर कुछ है, वो सब उनकी तरफ से प्राप्त हुआ है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान यमुना किनारे जब भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो केवल राधा रानी के ही नाम का ध्यान करते हैं, उनके ही चरणारविंद पर अपना मन एकाग्र करते हैं, उनकी कृपा याचना करते हैं। ये ऐसा एक रहस्य है कि जो प्रेम राधा रानी कृष्ण पर करती हैं वो स्वयं कृष्ण को भी समझ में नहीं आता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने एक पूरा अद्भुत अवतार लिया है, श्री गौरांग महाप्रभु का, केवल ये समझने के लिए कि चीज है क्या, चीज क्या, इसका महात्म्य है क्या, इसका गहराई है क्या, इसका विस्तार है क्या, इसकी क्वालिटी है, वो स्वयं समझ नहीं पाते हैं। कुछ कुछ अनुभव करते हैं जब राधा रानी पर ध्यान यहां करते हैं। तो एक पूरा अवतार कलयुग में 1486 में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण भगवान लेते हैं, केवल ये रहस्य समझने के लिए कि ये प्रेम की अद्भुतता क्या है। तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं, बहुत न्यून है, बहुत तुच्छ हैं इनके सबके विषय के सामने, लेकिन फिर भी श्रीमती राधा रानी बड़ी दया से हमको यहाँ पर लाती है। उनकी इच्छा के बिना, उनकी कृपा के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। सबसे पहले आप लोग हाथ जोड़ लो और राधा रानी का बड़ा धन्यवाद करो हृदय से कि हमारी योग्यता न होते हुए भी आपने हमको यहाँ प्रवेश दिया, और अब हम चाहते हैं कि शरीर से तो आ चुके हैं, अभी आत्मा से भी यहाँ पर रहे जितने दिन आपको रखना है आपके धाम में, क्योंकि यहाँ पर सारा आधिपत्य जो है वो राधा रानी का है। यहाँ पर श्री वृंदावन धाम है लेकिन सब लोग राधे राधे पुकारते हैं, यहाँ का हर एक डाली डाली, पत्ता पत्ता, शाखाएं, कण कण यहाँ का जो है वो राधे राधे पुकारता है ना, कोई भी कृष्ण को नहीं पुकारता है, क्योंकि जब राधे को पुकारते हैं तो कृष्ण भाग भाग के आ जाते हैं। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे दार दौड़े आएंगे, तू सिमरण कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। हम सब लोग पीड़ित हैं, कष्टित, कष्ट पा रहे हैं दुनिया में, त्रिविध ताप को भोग रहे हैं, त्रिगुणों के प्रभाव में कर्म करके उनका परिणाम भी भोग रहे हैं। तो दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। लाडली अद्भुत नजारा तेरे दरबार में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर विचार हैं, केवल उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और राधा रानी बड़ी कृपालु हैं, भोली हैं, श्री कृष्ण भगवान बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन राधा रानी बड़ी आसानी से कृपा करती हैं। इसलिए सब लोग अभी बरसाने में आए हो, हमारा भाग्य है कि हमारी यात्रा बरसाने से शुरू हो रही है। जहाँ रस का उगम होता है वहीं से आपकी यात्रा शुरू हो रही है, और यहीं से आपको वो कृपा मिलेगी। तो जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं वो गहवर कुंड कहते हैं उसको, राधा सरोवर भी कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि ब्रह्मा जी ने 120,000 साल तपस्या किया कृतयुग यानी सत्ययुग के शुरुआत में। पहले 60,000 किया, फिर रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर सेवा किया, फिर सत्ययुग के अंत में फिर 60,000 साल तपस्या किया। 60,000 में कितने घंटे होते हैं गिनेंगे तो चक्कर आ जाएगा, है ना। तपस्या किया बहुत घोर, फिर श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया और पूछा क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि आपके चरणों के रज चाहते हैं, आपके सखाओं सखियों की लीलाओं का दर्शन भी चाहते हैं। तो उन्होंने उनको बरसाने भेज दिया और ब्रह्मा जी यहाँ पर पर्वत बने हुए हैं। हमारे जितने भी संप्रदाय हैं, 12 संप्रदायों का वर्णन शास्त्र में आता है, वो सभी संप्रदायों के प्रमुख आचार्य ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी यहाँ पर पत्थर बन के खड़े हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात बरसाने में आने के पहले समझने वाली यही है कि पत्थर बनना मतलब क्या, होने का नहीं होना, है ना, एज इफ यू बिकम मिस्टर नथिंग। पत्थर पर क्या क्या करते हैं मालूम है ना, कुत्ता बिल्ली सुअर सब कुछ कर देते हैं, अपने गंदे पैर रखे भी चलते हैं। लेकिन वो स्थान भी, वो पोजीशन भी ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया
क्योंकि वो राधा कृष्ण और गोपाओं के लीलाओं के दर्शन और उनके चरणों के रज चाहते थे, इसलिए इतना नम्र स्थान यहाँ पर उन्होंने स्वीकार किया है, नम्र स्थिति को प्राप्त किया है। और हम चढ़ते उनके ऊपर श्री जी का दर्शन करने के लिए, तो इसलिए दूसरे बार हाथ जोड़ लीजिए और सब लोग ब्रह्मा जी से प्रार्थना कीजिए, पहले से क्षमा याचना कीजिए उनसे कि हम श्री जी का दर्शन करने के लिए आपके शरीर पर चढ़ेंगे, हमारे इतने गंदे पांव लेकर, पापी पांव लेकर, हमें क्षमा कर देना। इसलिए हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर में कोई बेफजूल की बातें ना करें, कोई प्रजल्प ना करें, कोई अपराध ना करें, हाँ, क्योंकि हम लोग वैसे ही अपराध करके ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाके और कोई ऐसा कार्य ना करे जो हमारे अपराध में और भर डालेगा। और अपराध तब माफ किया जाएगा जब हमारा चित्त जो है वो श्री राधा रानी की प्रार्थना में एकाग्र रहेगा, उनके चिंतन में रहेगा, तो हो सकता है कि अपराध से आप मुक्त हो सकते हो। तो ये जो है ये ब्रह्मा जी की नाभि है, द अम्बिलिकल अम्बिलिकस ऑफ ब्रह्मा जी, गहवर कुंड। गहवर कुंड का मतलब है गहिवर, यानी कि भावनाओं का अतिरेक नहीं कह सकते हैं, लेकिन ओवरवेलमिंग इमोशंस, हाँ, मराठी में ये शब्द आता है गहिवर, यानी कि जब भावनाएं बहुत उत्कट स्वरूप में पहुंच जाती है तो उसको गहिवर कहते हैं। तो गहवर बन यानी यहाँ पर श्री राधा और कृष्ण का बहुत गहवर भाव में अनुभव होता है उनको एक दूसरे के संग का। ये जो श्री जी का मंदिर है वहां से लेकर चिक्सोली गांव, हम चिक्सोली गांव में बैठे हैं अभी, इसके बीच में जो जगह है उसको गहवर बन भी कहते हैं। ये गहवर बन जो है ये स्वयं राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया है, आयर ओन लोटस हैंड्स, अपने कर कमलों से पौधे, हाँ, बेली, पेड़, छोटे पेड़, बड़े पेड़, फूल वाले पक्ष, फूल फल वाले, हर प्रकार के वृक्षों का जो निर्माण है, जो बोना है, वो राधा रानी ने अपने हाथ से उनको बोया है, जल दिया है, उनका लालन पालन किया है और उसको संवारा है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ पर बहुत सारे पुष्प वितान यानी कि कमान कमान रूपी सब बेलियाँ और वन का व्यवस्था है। यहाँ की खासियत है कि राधा रानी को, राधा रानी स्वयं बनाती है सब कुछ ये, लेकिन फिर राधा रानी का हाथ पकड़ के श्री कृष्ण भगवान उनको अंदर लेके आते हैं और एक हाथ से उनको ले आ रहे हैं, एक हाथ से हर एक वेलियों को उठा रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सघन वृक्षावली है ना, बहुत सघन वन है ये। और राधा रानी को आमंत्रित करते हैं, फिर कोयल बोलती है, फिर तोता बोलता है, बहुत संगीत मधुर मधुर होता है, पुष्पों की शैया पर बैठते हैं, फिर सखियां सेवा करती हैं। बचपन में ये जो छोटी छोटी बेलियां और बड़े बड़े वृक्ष जो होते थे उनका विवाह राधा कृष्ण बचपन के खेल में करते थे। दे यूज्ड टू गेट द क्रीपर्स मैरिड विथ द बिग ट्रीज, ऐसा बहुत अद्भुत यहाँ पर नज़ारा है। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर सफ़ेद रंग का मंदिर दिखाई पड़ रहा है पहाड़ पर, वो मानगढ़ है, ब्रह्मा जी के चार सर हैं जो चार गढ़ के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, ये मानगढ़ है। और आगे जाके विलासगढ़ मिलेगा, उसके आगे जाकर दानगढ़ मिलेगा, उसके आगे भानुगढ़ जहाँ पर राधा रानी का घर मंदिर विराजमान है। इसके ऊपर जो है आपके सामने दिखाई पड़ रही है सफ़ेद रंग की बिल्डिंग, पहले हरे रंग की थी, अभी सफ़ेद रंग की हो गई है ना, वो मोरकुटी है। हाँ, अभी संक्षेप में ही कर सकते हैं सब लीला, क्योंकि बहुत समय ज़्यादा गया हमारा। राधा रानी जब रुठती है, मान करती हैं, हम लोग क्रोध करते हैं स्वार्थ की वजह से, राधा रानी को जो भाव होता है उसको मान कहते हैं। मान का मतलब जो उनके ही आनंद के लिए, उनके ही प्रीति को बढ़ाने के लिए, उनके ही प्रेम संबंध को और दृढ़ करने के लिए वो मान करती है, जिससे उनका प्रेम संबंध हजारों लाखों गुना और दृढ़ हो जाता है। तो राधा रानी को श्रृंगार करने के बाद श्री कृष्ण भगवान उनके चेहरे को चांद की उपमा देते हैं, तो राधा रानी को गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि चांद में तो बहुत सारे दाग हैं, वो तो उनका क्षय भी होता है, उसको ग्रहण भी लगता है, उसमें सारे परग्रह भी उस पर नज़र डालते हैं, हाँ, क्या क्या दोष है उसके अंदर, और आपने हमको उनका नाम देकर तुलना किया, हमारा ग्रहण, हमको कभी हमारे सौंदर्य को ग्रहण लगता नहीं है, हमारा कभी क्षय नहीं होता है, हमारे सौंदर्य में कोई दाग नहीं है, कोई कमी नहीं है, हम पतिव्रता केवल आपके विषय में हमारा एक ध्यान चित्त है, चंद्रमा तो कई ग्रहों के प्रति उनका भाव रहता है। तो फिर उठ कर चली गई और ऊपर जाकर बैठ गई, ऊपर जाकर बैठ गई तो फिर ललिता जी आई, सब ने मनाया उनको, आवत जावत हार गई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नीचे कृष्ण भेज रहे हैं, उधर से वो दुत्कार रही है, फिर नीचे राधा ललिता आ रही है, फिर कृष्ण बोल रही है और एक बार जाओ, फिर वो थक गई बेचारी ललिता ऊपर नीचे जाकर। फिर उसके बाद में ललिता जी थकने के बाद में कृष्ण के कान में कुछ बोलती है, फिर कृष्ण अचानक चले जाते हैं। उसके पहले बहुत रोते हैं, राधा रानी के चरणों में गिरते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, आंसू बहाते हैं, उनके चरण धोते हैं आंसू से, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। जैसे आगे जाते हैं वो ऊपर चले जाती है, और ऊपर चले जाती। तो फिर अचानक मोर आते हैं, बहुत लंबी कहानी है वो, बहुत मोर आते हैं, नाच करने लगते हैं, उसमें एक अद्भुत मोर होता है, वो भी नृत्य करने लगता है। फिर राधा रानी इतनी प्रेरित होती है, ललिता जी उनको देखती है, अभी तो देखो कितने सुंदर मोर नाच कर रहे हैं, फिर वो भी मोरनी बनकर नाच करती है। बहुत देर तक बहुत सुंदर नृत्य होता है। उसके अंदर अचानक जब बहुत पास में आकर मोरमुनी नृत्य करते हैं, कब बीच में फिर गले मिलने लगते हैं, गले मिलकर नृत्य करने लगते हैं। जब गले मिलते हैं तो पता चलता है कि ये मोर और कोई नहीं श्याम सुंदर जी हैं। तो ये मोर कुटी है, इसमें एक अंधे बाबा रहते थे, उनको अंधे होते हुए भी स्वप्न में राधा रानी ने इस लीला को दिखाया। अंधे होते हुए, इसका मतलब अंधे लोगों को सपना आता है, ध्यान रखना। अंधे तो केवल बाह्य दृष्टि से होते हैं, अंदर की जो चक्षु होते हैं उसमें दर्शन होता है। सूरदास भी भगवान का दर्शन करते थे अंधा होने पर भी। तो वो साधु को अंधा होते हुए राधा रानी ने दर्शन दिया और कहा कि मेरी जो लीला है मोर लीला, उसको आप चित्रपट बनाओ। तो बोला कैसे बना सकता हूँ? तो राधा रानी की कृपा से उसने वो चित्रपट बनाया, जिसमें राधा रानी मोरनी और कृष्ण मोर बनकर ऐसे गोल कमान किए हुए खड़े हैं। बहुत सुंदर नृत्य का दृश्य है। तो वो उसके अंदर है, तो वो मोर कुटी है। और कई जगह पर ऐसा भी वर्णन आता है कि एक बार तो छुपके मोर बने, एक बार राधा रानी के डिमांड पर मोर बने, एक बार मोर बने, एक बार मोर का श्रृंगार करके बने, एक बार दोनों ऐसे आ रहे आए, हवा लहरा रही थी, उनके पल्लू ऐसे आकाश में उड़ रहे थे बहुत सुंदर सुंदर, तो अचानक उनको लगा कि कुछ लीला होनी चाहिए। तो वहाँ से मोर आए, यहाँ से मोर आया, आकाश से छींटे पड़ने लगी, ठंडी ठंडी हल्की हल्की आवाज़ बदलों से आने लगी। तो राधा रानी ने और गोपियों ने अपने कंगन से म्यूजिक शुरू किया, फिर कृष्ण ने मुरली निकाली, फिर राधा रानी ने पैरों से अपने पैंजन से म्यूजिक शुरू किया, और ऐसे अद्भुत संगीत में सब मोर आके नृत्य करने लगे। तो अनेक प्रकार की, विविध प्रकार की मोर लीला यहाँ पर नित्य रूप में रहती रहती। भगवान की लीला कोई एक ही जैसी नहीं है, उसमें बहुत सारी विविधता होती है। तो ये मान मंदिर में आप ऊपर जाएंगे तो आपको देखना एक चित्रपट है, वहाँ पर राधा रानी रूठ कर बैठी हुई है और कृष्ण उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। ललिता जी राधा रानी का बायां हाथ, कृष्ण का दाहिना हाथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं और राधा रानी उधर देख रही है, कृष्ण भगवान रो रहे हैं। वो चित्रपट देखना, बहुत प्राचीन चित्रपट है, हाँ इस स्थान का मूल लीला का चित्रपट है वो, जरूर देखना ऊपर जाने के बाद। उसी पर्वत पर हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज 6 महीना रुके थे। श्रील प्रभुपाद जी को मिलने के पहले यहाँ पर जो संत रहते हैं, रमेश बाबा जी महाराज बड़े परम संत हैं, उनके सानिध्य में वो रुके थे और उनको बहुत अद्भुत अनुभव यहाँ पर आए हुए हैं। आपको अनोखा सफर ग्रंथ में ये सब वर्णन मिलेगा, उसका आप ज़रूर आस्वादन कीजिए। उसके अंदर एक गुफा भी है, वहाँ पर भी भजन करते थे दोनों। और ये कुंड जो है, इसमें राधा रानी अपनी 64 गिनी चुनी सखियों को लेकर स्नान करते हैं। 64 ओनली प्राइवेट गोपीज फ्रेंड्स। और जब वो वहाँ पर स्नान करते हैं तो ग्वाल बाल ऊपर से लड्डू फेंकते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, हमारे बॉम्बे में टमाटर और अंडे फेंकते हैं, कितना घिलौना समय है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो बहुत स्वादिष्ट लड्डू होते हैं ना, वो उनको ऊपर से फेंक के डिस्टर्ब करते हैं। यहीं पर पीछे देखो रास मंडल है, यहाँ पर ठाकुर जी रास भी करते हैं। उसके पीछे एक आसन है, वहाँ पर एक बार मधुमंगल को पकड़ा था सब गोपियों ने, सबको पकड़ना था उनको, लेकिन कृष्ण बलराम सब भाग गए। मधुमंगल का पेट जो है ना वो खिड़की से बड़ा था, तो ऊपर से खींच तो लिया उनको पेट तक, लेकिन पेट के आगे खींच नहीं पाए क्योंकि पेट खिड़की से बड़ा था। तो गोपियों ने पैर से नीचे खींच लिया उसको और पकड़ लिया और बहुत पीटा उसको, मुक्के मारे, डंडे मारे, तो फिर वो चिल्लाने लगा। फिर कृष्ण भगवान बोले, अरे ब्राह्मण का पुत्र है, उसको बचाना चाहिए। वाक्य आए, बोले देखो ब्राह्मण का पुत्र है ना, जनेऊ देखा ना उसका, वो जनेऊ तोड़ेगा और श्राप देगा ना, तो तुम्हारा विवाह जो है ऐसे बुढ़ों से होगा जिसकी 7-7 पत्नियां होगी, 7 पत्नियां जिनकी है, ऐसे बुढ़ों से तुम्हारा शादी होगा। सब गोपियां क्या हो रहा है, सब गोपियां डर गई। और तुरंत वो ब्राह्मण को उन्होंने मधुमंगल को बहुत विनती करना शुरू किया, माफ करना माफ करना। तो कृष्ण भगवान बोले ऐसे नहीं माफी होती है, उनको पूछो क्या करना चाहिए। तो मधुमंगल ने बोला कि बहुत सारे लड्डू बना के लेके आओ। तो सारे गोपियां अपने अपने घर गई, बोले कोई लड्डू रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनके घर में लड्डू रवे का लड्डू, मेरे घर में भी रवे का लड्डू, ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग लड्डू होना चाहिए। तो सब गोपियां गई शाप के भय से। ये ऐसा क्यों आवाज हो रहा है? सब गोपियां जो है वो शाप के भय से सब स्वादिष्ट व्यंजन लड्डू बनाकर लेके आए और वो सिंहासन पर उनको बिठाया, उनका बहुत आरती पूजा श्रृंगार सब कुछ, प्रेम से उनको लड्डू खिलाया। फिर सब गोपियों को मधुमंगल ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा विवाह जो है तुम्हारे मन में जो वर है उसके साथ में होगा। तो ऐसा ये सुंदर स्थान है, यहाँ पर अनंत लीलाएं होती रहती है भगवान की। और आप देखिए इतने, हाँ ले लो ले लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। वे तो यात्रा शुरू हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बात नहीं, कीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप देखेंगे ऐसे ही ब्रज में आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपको सुंदर सुंदर वृक्ष दिखाई पड़ेंगे। हाँ, अपनी आँखों को, अपने नाक को, अपने कान को सब जगह जागरूक रखना, क्योंकि ब्रज भूमि जो है बहुत ही अद्भुत है। अपने अपने हरेक इंद्रियों से उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। देखिए पीपल का वृक्ष है, कदम का वृक्ष है, बहुत सारे सुंदर सुंदर वृक्ष यहाँ पर है। वो सब राधा रानी का एक तो स्वरूप है, या तो ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, या तो ये वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष हैं, वो आपके सारी बहुत आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसके आगे मान मंदिर से आप आगे जाएंगे तो आपको दानगढ़ आएगा, और दानगढ़ बिलासगढ़ के बीच में रास्ता आता है, उसका नाम है सांकरिकोर। और ये सांकरिकोर का मतलब है छोटा रास्ता, छोटा सा रास्ता, बहुत छोटा सा रास्ता, इतना छोटा कि केवल एक समय एक दिशा में एक ही व्यक्ति जा सकता है। तो बरसाने से यहाँ पर सब सखियाँ जो है वो माखन दूध दही लेकर मटके में जाती है मथुरा में बेचने के लिए। तो वो खबर पहुँचते ही कृष्ण भगवान अपने सखाओं को लेकर वहाँ से आते हैं और डंडे से उनको रोक लेते हैं। कैसे रोकते हैं? ऐसे, यहाँ से आगे जाना मना है। बोले क्यों? ये हमारा इलाका है, अब हमारे इलाके से इतना कीमती मूल्यवान वस्तु लेकर जाकर बेच रहे हो। बोले नहीं, ये तो राधा रानी का इलाका है, ये तो वृषभानु महाराज का राज्य है, ये तुम्हारे बाबा को मित्रता में कुछ राज्य दे दिया और राजा बना दिया, वैसे तो सब हमारा ही है। तुमको हमको टैक्स देना चाहिए क्योंकि तुम हमारे राज्य में आकर हमको टैक्स मांग रहे हो। तुम शरीर को लेकर, अपने हाथ को, पाँव को, आँखों को लेकर इस बरसाने में आए हो, तुमको हमें टैक्स देना चाहिए। ऐसे बहुत बहस होती है, बहुत लंबी लंबी। और ब्रह्मा जी जो है उसको देखते हैं, और जब ब्रह्मा जी देख रहे हैं तो ये जो पर्वत बने हुए हैं ना वो पिघलने लगता है भाव से। ब्रह्मा जी देख भी रहे हैं और भाव का भी अनुभव कर रहे हैं और विवल हो रहे हैं। तो फिर एक बार, हर रोज का झगड़ा ये, फिर डंडे से राधा रानी के सर का जो ऊपर रखा हुआ मटका है उसको तोड़ देते हैं और एक जगह गिर जाता है। वहाँ का पत्थर बहुत चिकना है। तो एक दिन, रोज का ये झगड़ा है, तो एक दिन सोचते हैं कि इनको को सबक सिखाना चाहिए। तो फिर एक दिन आते ही कहते हैं ले लो, कोई बात नहीं। तो वो आकाश में देखते हैं, सूरज कहाँ से उगा आज? पश्चिम में कि पूर्व में? अरे आज कुछ बहस नहीं, वाद नहीं, कुछ नहीं, तुरंत मिल रहा है। बोले एक ही कंडीशन है हमारी, आप लोग दो ना वो दोना लेके आओ, आपको हाथ में देंगे, हाथ से गिर जाएगा, इतना मूल्यवान दही दूध तो हमें पसंद नहीं आएगा वो। तो सब लोग भाग गए, और वो इधर धोनी कुंड है वहाँ पर आए। और धोनी कुंड का अलग अलग नाम है, मतलब है उसका,
एक दोहनी कुंड का मतलब है कि वहां पर वृषभानु महाराज अपने गायों का दूध दोहन करते थे, सेंट्रल प्लेस ऑफ मिल्किंग काउज। वहां पर कृष्ण भगवान ने भी एक बार राधा रानी के गाय को दोहन किया था। राधा रानी वहां से आई तो उसको ऐसा घुमाया और राधा रानी के चेहरे पर पिचकारी दूध की लगाई। तो वहां गए तो वहां पर पुराने जमाने में हमने भी 25 साल पहले देखा हुआ है कि कदम के पेड़ पर दोना उगते थे रेडीमेड। उसकी भी एक लंबी कहानी है कि कदम के पेड़ों ने सोचा कि अभी भगवान को बार बार दोने की जरूरत होती है तो हमको रेडीमेड दोना देना चाहिए। तो तब से उन्होंने अपने पेड़ पर दोना रेडीमेड पैदा करना शुरू किया। सब बाल बाल भाग गए, उन्होंने दोना निकालना चालू किया तो सब सखियां पीछे भागी उनकी और उन्होंने सारी चोटियां जो है वो शाखाओं से बांधी, कोई पत्थर से बांधी कोई शाखाओं से बांधी। तो सब लोग क्या हो गए, अटक गए। हाथ में दोना और सर जो है वो चोटी से अटका हुआ है। सब लोग पुकारते हैं कृष्णा कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो बचाओ बचाओ। आमतौर पे जब पुकारते कृष्ण कृष्ण तो कृष्ण भगवान भाग के आके रक्षा करते हैं उनकी, लेकिन इस बार रिस्पांस में उनको कृष्ण बलराम की भी आवाज आई, बचाओ बचाओ। तो हमारे महाराज जी पूछते ऐसा क्यों, तो उन्होंने हमको बताया नहीं जब तक हम लोग पूरी साकरे को और पार करके नीचे नहीं आए, फिर नीचे इकट्ठा हो गए, बोले बताओ, तो हम बता नहीं पाए। उन्होंने कहा कि सब जगह जो शिरजोर है, हाँ सब जगह राक्षसों का वध करते हैं, यहाँ पर आकर राधा रानी के प्रेम की वजह से बहुत बद्ध हो जाते हैं, मतलब कमजोर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, मतलब वो भी पुकारते हैं, ये भी पुकार रहे हैं कृष्ण बलराम, ये भी पुकार रहे हैं बचाओ बचाओ, बचाता तो कोई नहीं है। फिर उन्होंने बहुत सखियों को बहुत विनती किया, राधा रानी को बहुत विनती किया है बचाओ छोड़ दो। तो उन्होंने कहा एक ही शर्त पर छोड़ देंगे, कल आप लोग का जो नायक है वो राधा रानी बनकर चुनरी ओढ़ के आएगा, अपने घर से मटका लेकर दही मक्खन लेके आएगा, आप सब लोग बाल बाल सखियां बनकर आएंगे, अपने अपने घर से मटका लेकर आएंगे और हम लोग राधा रानी कृष्ण बनकर आएंगे, हम सब लोग सखा बनकर आएंगे, फेटा पहनेंगे धोती पहनेंगे और डंडा लेकर आएंगे और आपको यही रोकेंगे और ये लोग आपका मटका फोड़ेंगे और आपका मक्खन का मक्खन दूध दही सब खाएंगे। तो इस बार कृष्ण को उन्होंने गिरफ्तार किया है, जब कृष्ण भगवान आते हैं सखी बनकर तो गिरफ्तार किया है, तो उनका फेटा जो है वो ढीला हो गया, ब्रह्मा जी पिघल रहे हैं भाव से, तो वो जो फेटा है उसको घसीटते हुए लेके गए, वो तो फेटे का लाइन भी वहां पर गिरा हुआ है, जिस जगह मक्खन पहले गिरा था वहां पर भी चिकना चिकना पत्थर है और भगवान ने वो चाट चाट के खाया था तो उसका हाथों का निशान भी वहां बना हुआ है। तो वैसा अद्भुत स्थान है साकरी कोर। तो साकरी कोर में जो लीला हुई है उसमें कृष्ण भगवान राधा रानी बने हुए हैं, राधा रानी कृष्ण बने हुए हैं, उसका दर्शन दानगढ़ पे है। सबको समझ में आया, तो साकरी कोर की लीला है उसका दर्शन जो है वो दानगढ़ के मंदिर में आपको मिलेगा। जब जाएंगे उस मंदिर में गौर से देखना है, राधा रानी जो है वो कृष्ण स्वयं है और कृष्ण जो है वो राधा रानी है और कृष्ण के गले में मैंने बहुत बार मंगलसूत्र भी देखा है। कभी कभी नहीं रहता लेकिन बहुत बार रहता है वो दानगढ़ जो है। उसकी और भी लीला ऐसे कि ब्राह्मण एक बार वहां पर आया था, उसके पास तीन बेटियां थी, वो रो रहा था तीन बेटियां हैं शादी करनी है पैसा नहीं है कुछ दान दो कन्हैया कुछ करो आप तो राजा के पुत्र हो, बोलते मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर भी वो गिड़गिड़ाते हैं कुछ दे दो, बहुत सोचते हैं कि मेरे पास क्या है। तो उनको याद आता है हाँ मेरे पास एक धन तो है, मेरे पास धन क्या है, हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो तुरंत मंत्र बोलते हैं ब्राह्मण को, राधा रानी को दान कर देते हैं। पुराने जमाने में वो आचमन करके मंत्र बोल के दान करना होता था। तो ये दान होने के बाद में उसको खुश होना चाहिए था लेकिन वो और जोर से रोने लगा, मतलब पहले तीन गुना रो रहा था अभी चार गुना रोने लगा। क्यों? पहले तीन थी अभी चार हो गई, पहले तीन के लिए रो रहा था शादी कैसे होगी अभी चार की शादी कैसे करूंगा। तो ब्राह्मण को देखकर कृष्ण को दया आ गई, कृष्ण ने कहा कि सखियों को बुलाया, उन्होंने कहा कि राधा रानी को एक पलड़े में बिठाओ और आपके जितने गहने पहनकर आई हो सब दूसरे पलड़े में रखो, जितना राधा रानी का वजन होगा उतना सारे गहने हम ब्राह्मण को दान कर देंगे। और फिर राधा रानी बैठती है, सब सखियां कृष्ण के इशारे पे सब निछावर कर देती हैं और सब ब्राह्मण को दान देता है, ब्राह्मण बड़ा खुश हो जाता है। तो ये दान लीला है। वहां पर भी मैं तो बहुत तेज फास्ट बता रहा हूँ आपको, वहां पर एक कुआं है, वहां पर रास मंडल है, झूला है, वहां पर
राधा कृष्ण झूला झूलते हैं, रास रचाते हैं, और रास में जब ललिता देवी को प्यास लगती है तो अपने मुरली से ललिता जी के लिए कृष्ण भगवान कुआं खोदा हुआ है। भाई पत्थर में कुआं देखा है क्या आपने कभी? पत्थर में मीठा पानी कभी देखा है? यहाँ पर बहुत जगह पर ऐसा है, उधर वृंदावन जाएंगे ना मदन मोहन जी के मंदिर के, उधर भी पत्थर पे मीठे पानी का कुआं है। यहाँ पर भी ललिता के लिए भगवान ने कुआं बनाया है, तो बहुत सुंदर स्थान है वो। उसके आगे आप जाएंगे तो कुशल बिहारी जी का मंदिर है। कुशल बिहारी जी मंदिर वो मंदिर है जो जयपुर के राजा ने बनवाया है। उसके मन में ऐसा आया कि हम राजा रानी को बहुत बढ़िया मंदिर देंगे, जो अभी मंदिर भानुगढ़ में बना हुआ है उससे भी बढ़िया मंदिर बनाएंगे। तो आप देखिए मंदिर जाकर, इतना अद्भुत मंदिर है, पता नहीं कितने समय लगा होगा उसको, और पहाड़ पर कैसे इतने पत्थर लाया होगा, इतना कला कुसर का, इतना सुंदर एक एक चीज इतनी बारीकी से बनी हुई है। तो पूरा मंदिर बनने के बाद समय तो बहुत लगा होगा उसको, आज से 400 साल पहले की बात है। जब राधा रानी को शिफ्ट करने का समय आया तो राधा रानी ने स्वप्न दिया, जैसे कि हम जो कल उनको लाना है आज स्वप्न दिया, उन्होंने कहा कि जहां पर मैं हूं वो मेरे पिताजी का घर है भानु महल, वो मेरा निज चिरंतन स्थान है, मुझे आप वहां से नहीं निकाल सकते, मैं वहीं रहूंगी। अभी आप बोलते इतना दिन से मेहनत कर रहा हूं, पहले क्यों नहीं बोला? आज स्वप्न देना था आपको, पहले पत्थर लाने के पहले बोलते तो वहीं काम बंद करता मैं। लेकिन भक्त लोग ऐसी बात नहीं करते, इतना सारा मेहनत करने के बाद में इतनी तमन्ना रख के कि राधा रानी को यहां पर लाएंगे और राधा रानी एक ही झटके में उसको कैंसिल कर देती है, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा। राधा रानी वही रहती है और दूसरे विग्रहों को यहाँ स्थापन करते हैं। तो जयपुर के राजा का जो समर्पण है, जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है, दाय विल बी डन, जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है, चाहे मैंने कष्ट किया हो, मेहनत की हो, समय गवाया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा है वही इच्छा के अनुसार हम कार्य करेंगे, जिसमें आपका आनंद है उसी के लिए। तवा इच्छा मत करो ये जतना, ठाकुर भक्ति विनोद भी कहते हैं, आपके लिए सारा प्रयत्न है, सारी मेहनत, सारा प्रयत्न, कोशिश आपके लिए है। तो जयपुर का मंदिर आप देखिए तो पता चलेगा आपको कि इतना भव्य मंदिर बनाने के बाद एक ही झटके में उन्होंने मना कर दिया उनको। तो वहां पर जो विराजमान ठाकुर जी है, उनका नाम है राधा कुशल बिहारी जी, उनका बहुत सुंदर मंदिर वहां पर उपस्थित है, उसका आप दर्शन कीजिए। उसके आगे हम जाएंगे राधा रानी के घर श्रीजी मंदिर में, वो राधा रानी के पिता माता का घर है। वृषभानु महाराज जो सूर्यदेव के अवतार थे, जो सुचंद्र के पिछले जन्म में सुचंद्र थे, और माताजी पिछले जन्म में कलावती थी, जो इस जन्म में कीर्तिदा बनी मुखाराई की कन्या के रूप में, उनका वहाँ पर महल है। और विश्वभानु महाराज नंद बाबा के बड़े अच्छे मित्र थे और दोनों मिलकर रहते थे यहाँ पर, दोनों को पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई बहुत साल तक, तो उन्होंने दोनों में तय करके दोनों गोकुल में और रावल में यमुना किनारे गए संतान प्राप्त करने के लिए। यथावकाश संतान प्राप्त हुई, कृष्ण बलराम यहाँ हुए, राधा रानी रावल में हुई, फिर राक्षसों का आतंक बढ़ा, फिर दोबारा वृषभानु महाराज और नंद महाराज अपने संतानों को लेकर यहाँ पर आए हैं। उसके आने के पहले वो काम्य वन में कुछ दिन रहे हैं, कुछ दिन खेलन वन में रहे हैं, कुछ दिन छठिकरा में भी रहे हैं, वो सब करते करते फिर वापस नंदगांव बरसाने में आके रहे हैं। बरसाने की और एक विशेषता है, नाम ही बरसाना है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा रस बरसते रहता है। एक नाम उसका है वरस्यानु, यानी जिसमें जो चोटियां हैं वर, वो बहुत सुंदर हैं। एक अर्थ है कि यहाँ का वर जो है कृष्ण, वो बहुत स्यानु यानी सुंदर है। शांडिल्य मुनि के अनुसार उसको वृषभानु ग्रह कहते हैं, जयदेव गोस्वामी के अनुसार वृषभानुपुर कहते हैं, ऐसे अलग अलग नाम है शास्त्रों के अनुसार। तो यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ पर कोई भी राक्षस ने कभी प्रवेश नहीं किया है। संक्षेप में, यहाँ पर पहले कंस के सेनापति आए, पत्थर हो गए, हाउ बिलाऊ, वो नंदगांव में विराजमान है, उसको कृष्ण को बलराम को डराने के लिए माता ने उपयोग किया उसका बाद में। और यहाँ पर उसके बाद में जब सेनापति लौट के नहीं आए तो खुद कंस आया ढूंढते ढूंढते, क्योंकि जब निकले वहाँ से तो नेक्स्ट डे यहाँ पर आए तो देखा कोई नहीं है गोकुल में, तो कहाँ गए? आगे 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 आए, बोले आगे आगे आओ और आगे जाओ, तो फिर वो बरसाने पहुँचे जावट में। ये क्षेत्र जो है बरसाना नंदगांव जावट, इस क्षेत्र में कोई राक्षस नहीं आया है। कोई पढ़ी कहानी आपने किधर भी राक्षस आया वध किया? वो सब बाकी के वनों में हुआ है, क्योंकि जैसे ही कंस ने प्रवेश किया है वो मिस
कमसनी गोपी बनी है, मतलब तुरंत श्री का शरीर प्राप्त किया। उसको और भी एक नाम है मोटली गोपी, बहुत मोटी शरीर की हो गई वो। तो सब सबके सामने अभी गर्ग संहिता में उसका बड़ा वर्णन है कि कंस कितना पराक्रमी था, बहुत लंबा वर्णन है, उसको नहीं करेंगे अभी। लेकिन ऐसे महापरिक्रमी दिग्विजयी कंस महाराज को शरीर प्राप्त हुआ स्त्री का, तो ना घर जाने को तो वहां पर भी संकोच, यहाँ ना यहाँ रहने को वहां पर भी संकोच। तो रोने लगे वो संकोच से और गोपियों से प्रार्थना करने लगे, बचाओ मुझे बचाओ। तो गोपियों ने कहा पहले कंडे लिपो, पहले गौशाला को साफ करो, गोबर के कंडे लिपो, सुखवाओ, उसको सुखाने के बाद इकट्ठा करो, टोकरे में डालो, सर पे रखो, घर पे जाके जमा करो, गौशाला साफ करो, गाय का दूध निकालो, मंथन करो, सारे काम करने होंगे। 6 महीने तक गोपियों ने कंस को यहाँ पर कंडे लिपवाए हैं, है ना, रोते रोते। आप लोगों को अगर कोई बोलेंगे कंडे लिपवाओ गोपी बनो तो आप नाच करोगे, बोले जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो गया। लेकिन कंस को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उसकी मति भ्रष्ट थी, जीवन का परम लक्ष्य ऐसे ही प्राप्त हो गया उसको चुटकी के साथ, लेकिन फिर भी मति विपरीत थी उसकी, इसलिए उसको उसका आनंद नहीं मिला और रोता रहा बेचारा। 6 महीने के बाद राधा रानी के चरणों में गिरा और राधा रानी ने उसको बताया दोबारा यहाँ पर आओगे तो परमानेंट लेडी रहोगे। अभी कुछ समय के लिए 6 महीने का आपका प्रोग्राम था, दोबारा तुम्हारा कोई आदमी या तुम यहां पर आओगे तो चिरंतन काल के लिए स्त्री बन के रहोगे। ये मेरा कुंड है किशोरी कुंड, ये नहीं वहां पर है जावट में, ये मेरा किशोरी कुंड है, इसमें स्नान करो और पुरुष का शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो उसने ऐसे ही छलांग लगाई और पुरुष बन गया और ऐसे ही गीला भागा मथुरा तक, पीछे मुड़के भी नहीं देखा। क्यों? कहीं किशोरी जी का मन न बदलेगा तो, कहीं विचार बदली हो जाएगा तो, भाग गए। उसके बाद में यहां पर कोई राक्षस नहीं आया। कारण क्या है उसका? राजा रानी को इस धाम में इस जगह पर बहुत ही उत्कट और बहुत अंतरंग लीला करने का प्लानिंग था। ऐसे उत्कट लीलाओं के बीच में कोई राक्षस आया, उसको मार धाड़ करना, फिर खून खराबा, फिर ये चिल्लाना, फिर गोपियां रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, भाग रही हैं, भूकंप हो रहा है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, ऐसा बहुत भयंकर आतंक होता था जब राक्षस लोग यहाँ पर आते थे। तो वो सब आतंक यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एकदम उत्कट प्रेममयी अंतरंग लीला सिद्ध होनी चाहिए, संपन्न होनी चाहिए। इसलिए राजा रानी ने लीला करके राक्षसों को दूर रखा। और एक बार नंद बाबा को, ऋषभानु महाराज को इस बिरादरी से निकालने की बात हो रही थी, तभी कुछ गोपों ने समझाया, रुको रुको ऋषभानु महाराज को अपने बिरादरी से निकालने का प्लानिंग मत करो, इनकी कन्या जो है ना महाप्रतापी है, इसके वजह से यहाँ पर कोई राक्षस नहीं आया, आप लोग बड़े चैन से जिंदगी जी रहे हो यहाँ पर। तो सब लोग शांत हो गए। तो ऐसी महाप्रतापी राधा रानी है जिनकी वजह से यहाँ पर केवल उत्कट प्रेम लीला होती रहती है, कोई राक्षस यहाँ प्रवेश नहीं करता है। तो वो श्रीजी महारानी का महल है, वहां पर कृष्ण भगवान का भी विवाह होता है राधा रानी के साथ में, वो घर जमाई बनकर चुनरी ओढ़कर सखी बनकर रहते हैं। आप देखिए दर्शन करेंगे ना तो कृष्ण को भी फेटा पहना है, उसके ऊपर एक चुनरी भी पहना हुआ है, क्योंकि वो भाव है उनका, वो राधा रानी के धाम में रहते हैं, सखी बनकर रहते हैं। उनका नाम है श्यामा सखी, वो कई बार श्यामा सखी बनकर आते हैं, कभी चूड़िया बेचने वाली बनकर आते हैं, कभी फूल बनने वाली बेचने वाली बनकर आते हैं, कोई ज्योतिष देखने वाली आती है, कोई ब्रह्मचारी बनकर आते हैं, कभी जोगी बनकर आते हैं, क्योंकि उनको नंदगांव में बहुत देर तक रहना संभव नहीं है, वो विरह में इतने व्याकुल होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर यहाँ पर आ जाते हैं। तो उसके आगे श्रीजी महल में बहुत सारी लीलाएं हैं, वहीं पर आकर यशोदा मैया ने कीर्ति माता से विनती किया था कि आपके बेटी को हमारे बेटे के लिए भोजन बनाने के लिए नंदगांव भेजा करो, कई सारी लीलाएं हैं। तो वो राधा रानी का निजी घर है, राधा रानी के मंदिर में आप जाएंगे, नीचे एक कुछ सीढ़ियों के नीचे एक सफ़ेद रंग का मंदिर है, वहाँ पर राधा रानी साल में 3 बार नीचे आती हैं, एक हरियाली तीज जब झूला शुरू होता है, एक राधाष्टमी और एक होली, ये 3 उत्सव में राधा रानी अपना निजी स्थान छोड़कर नीचे आती हैं और हर जाति के लोग उनकी पूजा सेवा करते हैं। वहीं पर आगे जाएंगे तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहाँ पर ब्रह्मा जी विराजमान है, उसी के आसपास में श्री जी की जो मूर्ति है वो वज्रनाभ ने 5000 साल में स्थापन की थी, जब कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद में राधा रानी का लाडली जी का विग्रह स्थापन किया था, वो यथावकाश लुप्त हो गया था, फिर नारद मुनि के अवतार नारायण भट्ट जी गोस्वामी महाराज ने उनको स्वप्न दिया राधा रानी ने, और स्वप्न के आधार पर उन्होंने वहीं से ब्रह्मा जी के मंदिर के पास से ही श्री जी की मूर्ति को पुनः प्रकट किया, वो भी चरणों चिन्ह वहाँ पर स्थान है राधा रानी के। और पुजारी जी कहते हैं जितने राधा रानी के चरण चिन्ह अभी हैं, चरण है, उतने ही चिन्ह वहां पर आपको मिलेंगे जो ब्रह्मा जी के नीचे। फिर आगे जाके कामधेनु का दर्शन है, पीछे मंदिर के एक सिंहासन है, चरण पादुका दर्शन है, वहां पर खड़े होकर राधा रानी 7 किलोमीटर दूर नंदगांव में कृष्ण को इशारे करती थी, सिग्नलिंग पॉइंट। तो इस तरह से बहुत अद्भुत लीलाएं वहां पर है। उसके आगे हम लोग नीचे उतरेंगे और पीली पोखर जाएंगे। पीली पोखर उसको प्रिया कुंड भी कहते हैं, वो वृषभानु कुंड भी कहते हैं। एक कल्प में श्री जी का जन्म वहां पर भी हुआ है। तो वृषभानु कुंड में राधा रानी ने अपने हल्दी लगाए हुए हाथों को धोया था। बहुत लंबी कहानी है वो, आप इतना ही समझ लेना कि यशोदा माता उनके घर में रोज राधा रानी आकर भोजन बनाती थी, तो रोज अपने प्रिय वस्तु को देखकर उनको भावना उमड़ आती थी। एक दिन रहा नहीं गया तो हल्दी लगा दिया। हल्दी का मतलब क्या होता है? वाग्निश्चय, एंगेजमेंट, बिट्रोथल। तो राधा रानी बड़ी खुश हो गई, यहाँ पर आई थोड़ा होश में आई, अरे बाबा को तो बताया नहीं, अपने आप सगाई करके आई। तो ललिता जी ने आदेश दिया कि चिंता मत करना, ये बहुत अच्छा कुंड है, यहाँ पर अच्छा हाथ धो लेना, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो राधा रानी हाथ धो के चली गई और कुंड पीला हो गया। और ग्वाल बाल ब्रजवासी जो है ना बहुत चतुर होते हैं, उन्होंने मन की सारी कल्पनाओं को एक लाइन में जोड़ दिया और उसकी माला बना के कहानी बना दिया। क्या कहानी बना दिया? यहाँ से रोज गई जाती है, वहाँ पर यशोदा माता जी को बड़ा प्रेम आया होगा, प्रेम भरे भाव में हाथ को हल्दी लगाया होगा, अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया होगा, वाग निश्चय किया होगा, फिर यहाँ पर आई होगी, फिर शर्माई होगी, संकोच किया होगा, फिर हाथ धोया होगा, फिर वो कुंड पीला हो गया। सीधे गए मैया के पास, अरे वृषभानु महाराज, अरे कीर्ति मैया, हमने सुना है कि आपकी राधा रानी की सगाई हो गई नंदलाल के साथ। तो बड़ा आश्चर्य हो गया उनको, राधा रानी की ओर देखा, उन्होंने अपना सर झुकाया, क्या कहेंगे बेचारी। तो इस तरह से बहुत लंबी लीला है वो, कोई बात नहीं, वो कुंड जो है वो पीला हो गया उसकी वजह से। और कुछ दिन बाद वहां पर कृष्ण भगवान आए, रहा नहीं गया, उनको देखा तो अरे पहले तो क्लियर पानी था, अभी पीला कैसे हो गया? तो पानी में उतर गए तो खुद पीले हो गए और पुकार रहे हैं कि ये पीला रंग कैसा है, ये पीला रंग कैसा है, और खुद पीले होकर बाहर आ गए पूरे गौरांग महाप्रभु बनकर। तो हमारे परम पूज्य बरसाना महाराज बताते हैं कि उन्होंने इस लीला में पहली बार ये बताया कि अगली बार मैं गौरांग महाप्रभु बनकर आने वाला हूँ, इस पीली पोखर में बताया। पीली पोखर का और भी महत्व है कि पीली पोखर में होली शुरू होती है, वहाँ पर आकर पहले पांडे को भेजते हैं, पांडे लीला, पांडा मतलब कौन, वो मैसेंजर, वो नौता लेके आता है निमंत्रण लेके कि नंदगांव से निमंत्रण आया है। तो पांडे को बहुत रंग से भिगा भिगा कर पूरा धो देते हैं, पांडे बेचारा परेशान हो जाता है। राधा रानी को दया आती है, उसको सब सखियों के आतंक से बचा देती है, घर ले जाती है, स्नान वान करा के नया पटका, नया धोती, नया कुर्ता, दक्षिणा, भोजन करके पालकी में बिठा के वापस भेजती है। बोले बेचारे वो तो न्योता देने वाला है बेचारा, आने वाला तो दूसरा कोई है, इसको कुछ तंग कर रहे हो। तो उसको फिर अगले दिन बड़ी लंबी बारात में, देवताओं की बारात में बैठकर कृष्ण भगवान आते हैं और वहां पर होली खेलते हैं। तो होली में वहां पर कृष्ण भगवान को अरेस्ट कर लेते हैं और राधा रानी के हाथों से पूरे मुंह में काजल लगा देते हैं पनिशमेंट के रूप में, उनका दुपट्टा छीन लेते हैं और उनके हाथों से ऐसा एक उंगली से नहीं, पांचों उंगली से पूरा चेहरा काला कर देते हैं, हाथ बांध देते हैं और बहुत दंडे देते हैं, गाली देते हैं। वो गाली मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये बहुत अद्भुत स्थान है, यहाँ पर अनंत लीलाएं हैं। तो आप लोगों को विनती यही है कि हम लोग तो इतने योग्य नहीं हैं, लेकिन बड़े आदर और विथ ऑ एंड रेवरेंस भाव से ये कथाओं का श्रवण करना चाहिए और यही बार बार सोचना चाहिए कि हम लोग बिल्कुल योग्य नहीं है इसके, और फिर भी हमको राधा रानी ने यहाँ पर प्रवेश दिया है, उनका बार बार धन्यवाद है। यहाँ पर दंडवत करना है, प्रणाम करना है, रज को माथे पर लगाना है। सब सखियाँ बार बार विनती सोचती थी कि ऐसी क्या बात है जो राधा रानी कृष्ण को हमेशा वश में रखती है अपने। एक बार उनको पता चला ये रहस्य क्या है, वो राधा रानी यहाँ की रज जो है वो कृष्ण को सर पे लगाती है तो कृष्ण उनके वश में हो जाते हैं, फिर सब लोग अपने हाथों से कृष्ण को रज लगाने लगे, वश करने की भाव से नहीं, अपना बनाने के लिए कि मेरा होना चाहिए खाना। तो ऐसा अद्भुत यहाँ पर भाव है, सब लोग प्रार्थना कीजिए, राधा रानी आप पर कृपा करें, वो सारे कष्टों को मिटाती है, उनका नाम उच्चारण करने से
श्री कृष्ण भगवान उच्चारण करने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे भागते हैं। तू सिमरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार के दौड़ पे आएंगे। तो हमें ये रहस्य पता होना चाहिए, कृष्ण को डायरेक्ट पुकारेंगे तो शायद वो आपको प्रतिसाद नहीं देंगे, लेकिन राधा रानी को पुकारेंगे तो कृष्ण आपको तुरंत प्रतिसाद देंगे, आप पर कृपा करेंगे।
जय जय श्री राधे श्याम।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।